أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم. مفاد الجنان میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، اور کوئی بھی مہینہ حرمت اور فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں. اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اور یہ کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی دور ہو جاتا ہے اس سے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا مہربان ہے. اور اس ماہ میں بکثرت یہ کہا کرو، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں. اس ماہ کے لیے روزے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ہر روز 100 مرتبہ تسبیحات پڑھے تو اس کو روزے کا ثواب حاصل ہوگا. وہ تسبیحات مفاد الجنان میں تحریر ہیں. اس مہینے کے کچھ تو مشترکہ اعمال ہیں، یعنی پورے مہینے انجام دیے جائیں، دعائیں، اذکار وغیرہ. کچھ مخصوص اعمال ہیں یعنی خاص تاریخوں میں انجام دیے جائیں، مثلا 1 رجب، شب 15 رجب وغیرہ. اس کی نمازیں بھی بتائی گئی ہیں ماہ رجب کی، اور چھوٹی بڑی دعائیں بھی ذکر ہوئی ہیں. اب جس کو جیسے سہولت ہو، اس مہینے کے لیے مختلف استغفار بھی بیان کیے گئے ہیں. اور اس مہینے کا ایک استغفار ہے کہ استغفر اللہ والجلال والاکرام من جمیع الذنوب والاثام، بخشش چاہتا ہوں خدا سے جو صاحب جلالت و بزرگی ہے، اس سے اپنے تمام گناہ اور خطاؤں پر طالب عفو ہوں. اس کے لیے کہا گیا کہ پورے رجب کے مہینے میں اس استغفار کو 1000 دفعہ پڑھا جائے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پورے مہینے میں 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. نبی سے روایت ہوئی کہ جو شخص ماہ رجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا، اور جنت میں اس کے لیے 100 شہر بنائے گا. رجب کی مختلف دعائیں بھی بیان ہوئی ہیں مفات الجنان میں، اور ان میں سے ایک دعا ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کا ہر روز پڑھنا مستحب ہے. اس کے چند جملے کہ پروردگار سے دعا کی جا رہی کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے، فراواں روزی سے زندہ رکھ، مجھے خوشی اور بخشش کی حالت میں موت دے، اور برزخ کی گفتگو میں تو خود میرا سرپرست بن جانا، منکر اور نکیر کو مجھ سے دور کر دینا، مبشر اور بشیر کو میری آنکھوں کے سامنے لانا، اور مجھے اپنی رضا مندی اور بہشت کے راستے پر گامزن کر دینا. ایک دعا میں اس طرح سے دعا کی جا رہی ہے کہ اس مہینے میں ہم پر اپنی نعمتیں کامل فرما، اس مہینے میں ہماری قسمتیں نیک کر دے، بخش دے ہمارے وہ گناہ جن کو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور ہمیں گناہوں سے بخوبی محفوظ فرما، ہماری کفایت فرما. ایک دعا جو کہ ناحیہ مقدسہ سے صادر ہوئی، اس میں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی النقی علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کی گئی ہے کہ اے معبود، ماہ رجب میں پیدا ہونے والے 2 مولودوں کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ محمد ابن علی اور ان کے فرزند علی ابن محمد جو بلند نسب والے ہیں، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس گناہگار جیسا سوال جسے گناہوں نے تباہ کر دیا اور عیبوں نے جکڑ لیا ہے، بس گناہوں پر اس کی عادت پختہ ہو چکی ہے اور بلاؤں سے مشکلیں بڑھ گئی ہیں. اب وہ سوال کرتا ہے تجھ سے توفیق توبہ اور بہترین بازگشت کا، گناہوں سے کنارہ کشی اور آتش جہنم سے چھٹکارے کا خواہش مند ہے. इसी तरह दीगर दुआएं हैं जिनके लिए कहा गया है कि इनको रोज़ पढ़ा जाए। इसमें छोटी दुआएं भी हैं और बड़ी दुआएं भी हैं। फिर कुछ मखसूस आमाल हैं जिनमें पहली रात के आमाल, पहले दिन के आमाल हैं, और कहा गया है शबे अव्वल के लिए कि ये बड़ी बाबरकत रात है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप अपने वालिद और अपने जद अमजद अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप फरमाया करते, मुझे खुशी महसूस होती है कि इंसान पूरे साल के दौरान 4 रातों में ख़ुद को तमाम कामों से फारिग करके बेदार रहे और खुदा की इबादत करे। वो 4 रातें ये हैं: रजब की शब अव्वल, शब नीमाए शाबान, शब ईद फितर और शब ईद कुर्बान। शब अव्वल के लिए कहा गया कि गुसल किया जाए, और बाज़ उलमा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स माह रजब को पाए और इसके अव्वल वस्त और आखिर में, यानी शुरू दरमियान और आखिर में गुसल करे, तो वो गुनाहों से पाक हो जाएगा, ऐसे कि जैसे वो आज ही दुनिया में आया है। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी की जाए। और पहले दिन के लिए भी रिवायत है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे, यानी पहली रजब के दिन, तो खुदा उसे बख्श देगा। जब ये कहा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की जाए, तो जो लोग रोज़ाए अक़दस से दूर हैं, इतना दूर हैं कि ज़ियारत करने नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह से ज़ियारत करें जैसा कि शबे नीमाए शाबान के आमाल में बताया गया है। रिवायत है कि जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगंबर उससे मुसाफा करें, तो वो कभी इस रात ये ज़ियारत तर्क ना करें। हज़रत की छोटी सी छोटी ज़ियारत है कि अपने घर की छत पर जाए, अपने दाएं बाएं नज़र करे, फिर अपना सर आसमान की तरफ बुलंद करके ये कलमात कहे: अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई शख्स जहाँ भी और जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुख्तसर ज़ियारत पढ़े, तो उम्मीद है कि उसको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। ये रिवायत शबे नीमाए शाबान के अमाल में ज़िक्र की गई है। अब जब कहीं भी आमाल में ये ज़िक्र आए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की जाए, और वो शख्स के जो रोज़े से बहुत दूर है ज़ियारत को नहीं जा सकता, तो वो इस तरीक़े से ज़ियारत बजा लाएगा कि अपने घर की छत पे जाके दाएं बाएं नज़र करके आसमान की तरफ सर बुलंद करके इमाम को सलाम कहेगा। रजब के पहले दिन गुसल और रोज़ा रखने का कहा गया है। और भी आमाल बताए गए हैं जो मफातिल जुनान में देखे जा सकते हैं। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू तवज्जो दिलाने के लिए है। इसके बाद शबे 13 के आमाल हैं। 13 रजब विलादत बासआदत मौलाए कायनात का दिन है। 13, 14, 15 रजब को रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब बताया गया है। रजब, शाबान, रमज़ान की 13, 14, 15 की शब की नमाज भी बताई गई है। इसके बाद फिर रजब की शबे 15 है, जो कि बफजीलत रात है, और 15 का दिन भी बफजीलत है। और शबे 15 रजब और शबे 15 रजब के अलावा 15 रजब के दिन के आमाल भी बताए गए हैं। इनमें एक तो क्या है कि गुसल किया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, और दीगर आमाल भी हैं। फिर शबे 27 और 27 के दिन के आमाल हैं, जो कि तकरीबन अक्सर लोग जानते हैं। 27वीं शब के लिए कहा गया कि बड़ी मुतबर्रिक रातों में से है, क्योंकि ये हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबअस, तबलीग पर मामूर होने की रात है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह रजब में एक रात है कि वो उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज चमकता है, और वो 27वीं रजब की रात है, जिसकी सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूसबा रिसालत हुए। हमारे पैरोकारों में से जो इस रात अमल करेगा, तो उसको 60 साल के अमल का सवाब हासिल होगा। फिर इस रात की नमाज तालीम फरमाई। इस रात गुसल करना मुस्तहब है, और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ी जाए, जिसके लिए कहा गया कि इस रात के तमाम आमाल से बेहतर और अफजल है। 27 के दिन के लिए कहा गया कि ईदों में से बहुत बड़ी ईद का दिन है। इसी दिन रसूलुल्लाह मबूस व रिसालत हुए, जिब्रील अमी अहकाम रिसालत के साथ हुजूर पर नाजिल हुए। इस दिन के आमाल बताए गए, जिनमें एक तो गुसल है, फिर रोज़ा है। इस दिन के लिए कहा गया कि ये दिन साल भर में उन 4 दिनों में से एक है जिनमें रोज़ा रखने की ख़ास इम्तियाजी शान है। इस दिन का रोज़ा 70 साल के रोज़े का सवाब रखता है, और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात की ज़ियारत की जाए। इसके अलावा दुआएं और नमाज़ें ही बताई गई हैं। इसके बाद फिर रजब के आखिरी दिन गुसल करने का हुक्म है, और रोज़ा रखने का गुज़िश्ता और आइंदा गुनाहों की माफ़ी का मूजिब है इस दिन का रोज़ा रखना। और इस रोज़ यानी आखिरी दिन और पहली रजब के दिन नमाज़े सलमान फ़ारसी पढ़ने का कहा गया है, जिसका तरीक़ा यकुम रजब के आमाल में तहरीर है। और एक बात की तरफ तवज्जो दिला दी जाए कि जिन लोगों पर भी रोज़े की क़ज़ा वाजिब हो वो मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते। जिन तारीखों में मुस्तहब रोज़ा रखने के लिए कहा गया है और वो लोग रोज़ा रखना चाहें तो अपने क़ज़ा रोज़े की नियत से रखेंगे, मुस्तहब रोज़े की नियत से रोज़ा नहीं रख सकते। माह रमज़ान में दाखिल होने से पहले हमें रजब और शाबान में तैयारी करवाई जाती है कि जब हम माह रमज़ान में दाखिल हों उस वक्त तक हमने अपने आप को परवरदिगार आलम का मेहमान बनने के लिए तैयार कर लिया हो, क्योंकि ये कहा गया है कि रोज़ेदार खुदा का मेहमान है। और इस महीने में आने वाली खुशियों की वो तारीखें जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से मंसूब है उनके बारे में जिक्र करेंगे, जिनमें अहम तरीन दिन 13 रजब का, जो कि मौलाए कायनात की विलादत बासआदत की तारीख है, कि इस रोज़ खाना काबा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की तारीख भी रजब के महीने में बताई गई है, और इमाम के बारे में हम आइंदा तफसील से बयान करेंगे। अभी हम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे।